अध्याय पांच द्वितीय सेतु जग तरण कियो रामानंद और कबीर का शेष अंश सवाई जयसिंह का अनुशासन पर्व। वैष्णव में से केवल रामानंदी ही शैव सन्यासियों का मुकाबला कर सकते थे। रामानंदी वैरागी बालानंद ने 18वीं सदी के तीसरे दशक में वैष्णवों को बकायदा सैनिक रूप से संगठित करना शुरू कर दिया। बालानंद मठ जयपुर के वर्तमान महंत श्री लक्ष्मणानंद अपने मठ की परंपरा के आधार पर कहते हैं, बालानंद जी ने 1729 ईस्वी में वृंदावन में वैष्णवों का सैनिक संगठन खड़ा कर दिया था। शैवों के उत्पीड़न की सामना तो सभी वैष्णवों को करना पड़ रहा था, लेकिन रामानंदी वैरागियों के सामने एक अतिरिक्त समस्या भी थी। वे स्वयं भी दूसरे वैष्णवों के लिए समस्या बन गए थे। सभी मानते थे कि रामानंद रामानुज के शिष्य परंपरा में हैं। रामानुजीय श्री संप्रदाय वर्णाश्रम के प्रति अपनी निष्ठा और आचार विचार की कट्टरता के लिए विख्यात हो चुका था, लेकिन रामानंदी अभी भी अपनी राह चले आ रहे थे। वैष्णव संगठन की जरूरत के उस समय में रामानंदी भी रामानुजी श्री वैष्णव की राह पकड़े, इसके लिए उन पर दबाव पड़ रहे थे। इन दबावों के कारण रामानंदियों के दैनंदिन व्यवहार, सामूहिक चेतना और स्मृति में पहचान का संकट उत्पन्न हो गया था। एक तरह की फाँक पैदा हो गई थी। यह फाँक मुबारक शाह के विवरण में साफ नजर आती है। स्वयं को रामानुजी पैमानों पर पवित्र सिद्ध करने की सामूहिक कामना ऐसी की विनंतियों को स्वीकार करती दिखती है, जिनके अनुसार रामानंद लेखों का मुंह तक नहीं देखते, जिनके अनुसार कवि उनके शिष्य के समानांतर ही था। रामानंदी वैरागियों के वास्तविक दैनंदिन व्यवहार का जगत, इस जगत में मिर्जा सालेह और मिर्जा हैदर जैसे कुलीन मुसलमानों को वैरागी बनते मुबाद शाह अपनी आंखों से देख रहे थे। हमारी राह वेद और कुरान की राह से जुदा है, ऐसा कहने वाले न हिंदू न मुसलमान वैरागियों की बानी अपने कानों सुन रहे थे। कबीर को शिष्य बनाने में रामानंद की हिचक संबंधी जिस किंवदंती का आचार्य छिति मोहन सेन ने हास्यास्पद और बेहुदी करार दिया था, मुबाद शाह और बल्खी द्वारा वर्णित दैनंदिन जीवन की रोशनी में वह किंवदंती अपनी राह वेद और कुरान से जुदा बताने वाले न हिंदू न मुसलमान वैरागियों के जीवन की व्यथापूर्ण और ट्रेजिक कहानी लगने लगती है। इसी तरह के लोगों के उदय का क्षण भारतीय इतिहास में व्यक्ति सत्ता के उदय का क्षण था, लेकिन यह उस विशिष्ट परंपरा रामानंदी परंपरा के लिए अस्तित्व को संकट का भी क्षण था, जिसने इन लोगों के विशिष्ट सामूहिक पहचान संभव की थी। स्वयं को न हिंदू न मुसलमान कहने वाले वैरागी सामाजिक पहचान की धरातल पर अंततः वैष्णव ही थे। इस धरातल पर उन्हें कट्टर मुसलमानों को भी झेलना पड़ता था और कट्टर शैवों को भी। सामाजिक संरचना के मध्यवर्ती निम्न स्तरों से संबंध रामानंदी स्वयं भी लड़ने भिड़ने में सक्षम थे, अपनी ओर से तथा अन्य निरीह वैष्णवों की ओर से भी लड़ते थे। बालानंद द्वारा वैरागियों का सैनिक संगठन इसी उद्देश्य से खड़ा किया गया था। इसके बावजूद आचार विचार के सख्त पालन के आग्रहशील अन्य वैष्णव रामानंदियों की आचार विचार और जाति पाति के प्रति उपेक्षा को अक्षम्य मानते थे। वे अपने इन रक्षकों को समादरणीय वैष्णव नहीं बल्कि केवल लड़ाई भिड़ाई के काम की वानर सेना ही मानते थे। लेकिन अब रामानंदी वैरागी उचित आदर की मांग कर रहे थे। उधर शैवों की आक्रामकता ने सभी वैष्णवों के सामने अस्तित्व का संकट उपस्थित कर दिया था। रास्ता एक ही था, रामानंदी अपने तौर तरीके सुधारें, वर्णाश्रम के अनुशासन और आचार विचार का पालन करें और दीगर वैष्णव रामानंदियों के प्रति अपना रवैया बदलें। 18वीं सदी के दूसरे दशक में इस दिशा में प्रयत्न आरंभ हो गए थे। इन प्रयत्नों को आमेर अर्थात जयपुर के राजा सवाई जयसिंह 1700 से 1743 का सक्रिय समर्थन और संरक्षण प्राप्त था। इस एजेंडे के परस्पर संबद्ध दो पहलू थे। औरंगजेब की मृत्यु 1707 के बाद केंद्रीय सत्ता कमजोर होती चली जा रही थी। विभिन्न प्रकार के सशस्त्र समूह इस स्थिति का लाभ उठा रहे थे। जयसिंह ने अपने प्रभाव क्षेत्र में इस हालत पर काबू पाने की कोशिश की। शैव वैष्णव संघर्ष पर नियंत्रण करना राजनीतिक अनुशासन कायम करने की इस कोशिश का ही अंग था, लेकिन जयसिंह के अनुशासन पर्व का एक धार्मिक सांस्कृतिक पहलू भी था, जिसके दूरगामी परिणाम हुए। जैसे कि आत्मछवि वैदिक स्मार्ट परंपरा के गो ब्राह्मण प्रतिपालक राजा की थी, अपने महाराष्ट्रीय राजगुरु रत्नाकर पौंड्रीक और अन्य स्मार्ट विद्वानों के परामर्श से उसने विभिन्न संप्रदायों को वैदिक विधि निषेध के अनुशासन में लाने का प्रयत्न किया। उत्तर भारत में ब्राह्मणों का वर्चस्व उतना नहीं था जितना कि महाराष्ट्र में। उधर का धार्मिक पर्यावरण स्मार्ट की बजाय वैष्णव स्वभाव का था। जयसिंह को माध्यम बनाकर स्मार्ट ब्राह्मण इस गड़बड़ को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे थे। इस प्रयत्न का ब्रज मंडल में बहुत असर हुआ। आगरे के सूबेदारी 1720 से 1726 करते हुए जयसिंह ने ब्रज के धर्म संप्रदायों में अच्छा खासा प्रभाव अर्जित कर लिया था। वह ब्रज का महत्व बढ़ाने में नहीं जजिया हटवाने में भी सफल रहा था। इसी समय में वैष्णव परंपरा खासकर गौणीय बंगाली वैष्णवता के प्रति भी जयसिंह के मन में सम्मान का भाव था, लेकिन इस सम्मान की शर्त वैदिक विधि निषेध का सम्मान और वैष्णवता का शास्त्रीय प्रमाण। स्मार्ट ब्राह्मणों के प्रभाव में जयपुर की राजसत्ता द्वारा यह शर्त काफी कड़ाई से लागू की गई थी। जयपुर के कापड़ द्वारा में सुरक्षित दस्तावेजों से पता चलता है कि वैष्णव संप्रदायों में शूद्रों और अन्य निम्न कुलोत्पन्न लोगों की क्या भूमिका और हैसियत होनी चाहिए। इस प्रश्न पर सवाई जयसिंह ने बंगाली वैष्णवों से बकायदा व्यवस्था मंगाई थी। राजसत्ता और धर्मसत्ता क्षत्रिय और ब्राह्मण के इस गठबंधन को सबसे तीखा प्रभाव और स्वाभाविक रूप से उन भक्ति संप्रदायों पर पड़ा जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व मानते थे। डॉक्टर प्रभुदयाल मित्तल के शब्दों में जयसिंह के सलाहकारों ने उसे समझा दिया कि इन संप्रदायों की प्रेमा भक्ति प्रचलित लोकाचारों के साथ ही वैदिक विधि निषेधों की भी विरोधिनी है और प्रेमोपासक भक्ति संप्रदाय अवैदिक है। इस अवैधिक भक्ति संप्रदाय पर जयसिंह के वैदिक अनुशासन पर्व के प्रभाव को डॉक्टर मित्तल ने बताया है कि स्वामी हरिदास और हित हरिवंश के भक्ति संप्रदाय अपना स्वतंत्र अस्तित्व तो मानते थे, किंतु सवाई जयसिंह के अनुसार उन्हें भी चतुर संप्रदाय में किसी एक के साथ संबंध जोड़ना आवश्यक था। इस विषम परिस्थिति में हरिदास के अनुयायी विरक्त साधियों ने निम्बार संप्रदाय से और गृहस्थ गोस्वामियों ने विष्णु स्वामी संप्रदाय से अपना अपना संबंध स्थापित किया। इस प्रकार हरिदासी संप्रदाय दो वर्गों में विभाजित हो गया। हित हरिवंश के अनुयायी राधा वल्लभ ही या भक्तजन किसी भी संप्रदाय के संबंध नहीं हो सके थे, अतः उन्हें जयसिंह के राजकीय कोप का भाजन बनना पड़ा था। तत्कालीन राधा वल्लभ ही आचार्य श्री राम रूपलाल गोस्वामी उसी कारण वृंदावन छोड़कर कामवन में निवास करने को बाध्य हुए थे। संवत 1800 से 1743 ईस्वी में जब जयसिंह का देहावसान हो गया तब कहीं वे वृंदावन में वापस आ सके थे। दो प्रक्रियाएं साथ साथ चल रही थी, शैवों से निपटने के लिए वैष्णवों का सैनिकीकरण और सवाई जयसिंह के आग्रह बल्कि आदेश पर अवैधिक भक्ति संप्रदायों का शास्त्रीकरण। राजा को न शैवों का सैनिकीकरण पसंद था न वैष्णवों का। ऐसे सैनिकीकरण को रोक भले न सके, लेकिन इसे नियंत्रित करना तो उनके लिए जरूरी था ही। उसका लक्ष्य स्पष्ट था, सैनिकीकृत हो या असैनिकीकृत तब सभी वैष्णव शास्त्र मर्यादा का पालन अनिवार्यतः करें। इस मांग का व्यवहारिक अर्थ भी स्पष्ट था, अपने आचार विचार या धर्माचार में शास्त्र मर्यादा का पालन और लौकिक सामाजिक व्यवहार में राजा के शासन का अनुगमन। जयसिंह के अनुशासन पर्व के ये दोनों पहलू परस्पर पूरक थे और रामानंदी वैरागियों तथा उनके अनुयायी गृहस्थ पर दोनों का दूरगामी प्रभाव पड़ा था। वैष्णव सैनिक संगठन के लिए जरूरी था कि विभिन्न संप्रदाय के आचार विचार संबंधी मतभेद दूर किए जाएं। सबसे बड़ा प्रश्न रामानंदी वैरागियों के आचार विचार का ही था। इस तथा अन्य प्रश्नों पर मंथन करने के लिए वैष्णवों की अनेक सभाएं 1713 से 1734 के बीच वृंदावन, गलता और नीम का थाना निम्बार्क स्थान में हुई। 1733 से 34 तक सवाई जयसिंह लगभग सभी महत्वपूर्ण रामानंदी महंतों वर्णाश्रम के अनुकूल चलने के शपथ पत्र हासिल कर चुका था। अनेक महंतों की ओर से गलता के महंत मथुराचार्य द्वारा दिया गया शपथ पत्र स्पष्ट कर देता है कि वर्णाश्रम के प्रति तब तक रामानंदियों का रवैया क्या था, जिसे बदलने की प्रतिज्ञाएं वे अब कर रहे थे। इस शपथ पत्र के अनुसार, पहला, चार वर्णों के लोग भविष्य में एक साथ भोजन नहीं करेंगे, सबकी पतंगें अलग अलग लगेंगी और सबकी पंगतें अलग अलग लगेंगी। दूसरा, कोई वैष्णव महंत किसी अंत्यज की दीक्षा नहीं देगा। तीसरा, जनेऊ आगे से केवल द्विजों को दिया जाएगा और पूरी संस्कार विधि के साथ शूद्रों को जनेऊ कदापि नहीं दिया जाएगा। शपथ पत्र के अनुसार उपर्युक्त प्रतिज्ञाएं श्री रामानुजाचार्य की मर्यादा के अनुकूल हैं और इनका उल्लंघन करने का भगवान के सामने, रामानंदी महंतों के सामने और महाराजा के सामने अपराधी और दंड का भागी माना जाएगा। भगवान तो दंड देते परलोक में, किंतु महंतों और महाराजा के दंड की संभावना तो लौकिक ही थी, लौकिक और तात्कालिक। इस दंड संभावना के ही सहारे जात पात पूछे नहीं कोई की घोषणा करने वाले रामानंदियों को ब्राह्मणवाद के रास्ते चलने पर विवश किया जा सकता था। यह विवशता क्षत्रिय राजा के सक्रिय सहयोग के बिना संभव नहीं थी। राजसत्ता और धर्मसत्ता दोनों को ऐसे लोग खतरनाक लगते थे, आज नहीं लगते क्या? जो संगठित धर्म की उपेक्षा कर धर्मेतर आध्यात्म की साधना और मानवीय संवेदना पर आधारित रहने की खोज करना चाहे। परजीवी सामंतों और पुरोहितों को ऐसे लोग तब तक भी खतरनाक लगने लगते हैं जब उनमें अधिकांश कृषक, कारीगर और व्यापारी हों। रामानंदी वैरागियों का सामाजिक प्रभाव ऐसे ही लोगों के बीच था, इसलिए उन्हें अनुशासित करना जयसिंह और उनके स्मार्ट परामर्शदाताओं की सर्वोच्च प्राथमिकता थी। एक उदारचेता समुदाय को राजदंड के दबाव में कट्टर बनाने का यही काम कोई 3 सदी पहले रामानुजियों के प्रसंग में विजयनगर के राजा ने दक्षिण में किया था। यह बात और है कि इस आरोपित कट्टरपन को रामानंदियों ने इस हद तक आत्मसात कभी नहीं किया जिस हद तक रामानुजियों ने कर लिया। इसके कारण थे दक्षिण और उत्तर की सामाजिक स्थितियों में अंतर था। दक्षिण के ब्राह्मण अभी सभी अब्राह्मणों को शूद्र और अस्पृश्य ही मानते थे। उत्तर में समाज इतने 2 रूप से अस्पृश्य और स्पृश्य में नहीं बटा था। यहाँ ब्राह्मण की वैसी हैसियत नहीं थी जैसी दक्षिण में। औपनिवेशिक सत्ता और ज्ञानकांड का साथ देकर उत्तर भारत के ब्राह्मणों ने वैसी स्थिति बनाने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन यह बात की बात है। फिलहाल हम 18वीं सदी के पूर्वार्ध की बात कर रहे हैं। बाद में भी ऐसी कोशिशों के बावजूद उत्तर के समाज में ब्राह्मण दक्षिण के ब्राह्मणों जैसा वर्चस्व न स्थापित कर पाए। रामानंदी तो वैसे भी ब्राह्मण वर्चस्व को नकारते थे। वे उत्तर भारत के सांस्कृतिक इतिहास में ब्राह्मण वर्चस्व को चुनौती देने की भूमिका औपनिवेशिक काल के पहले भी निभाते रहे और बाद में भी। यह उनके सामाजिक आधार का अनिवार्य प्रतिफलन था। उनके बीच 16वीं सदी के नाभादास और 19वीं सदी के शिवचरण कोरी जैसे शूद्र और निम्न कुलोत्पन्न होने के बावजूद सम्मानित लोग और भी थे। याद करें बड़ा स्थान के महंत जी के बुलावे पर वेदांत पढ़ाने अयोध्या पधारे दक्षिणात्य रामानुजी वैष्णव महोदय। यहाँ शूद्रों को वेदांत का अध्ययन करते देख हक्के बक्के रह गए। यह स्थिति तो औपनिवेशिक आधुनिकता की के जड़ जमा लेने की बात की थी। 18वीं सदी में तो रामानंदियों का ब्राह्मण वर्चस्व विरोधी रवैया और भी स्पष्ट था। रामानंदियों के ब्राह्मण वर्चस्व विरोधी रवैये के मूल में था रामानंद की स्वतंत्र चेतना व्यक्तित्व। रामानंद ने देशभाषा को जिस तरह देवभाषा भी बनाया, साधु की जाति नहीं जाने ज्ञान पूछने पर जो अथक बल दिया, उसके कारण ही रामानंद का व्यक्तित्व नाभादास को रघुनाथ द्वारा बांधे गए द्वितीय सेतु सा लगा था। उसके कारण ही तो रामानंदी संप्रदाय उत्तर भारत में मध्यवर्ती और निम्न जातियों की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति और आत्मरेखांकन का माध्यम बन सका। सवाई जयसिंह के अनुसार अनुशासन पर्व के दौरान आरोपित कट्टरपन को सैद्धांतिक रूप से मान लेना रामानंदियों की मजबूरी भी थी और जरूरत भी। मजबूरी थी राजा और अन्य वैष्णव संप्रदायों के दबाव के कारण। जातीय संप्रदाय क्या राष्ट्रीय घृणा की स्थिति में आपकी अपनी सोच से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है वह सामाजिक अस्मिता जो आपके प्रतिपक्ष, बल्कि कहिए कि वे ऐतिहासिक पल जो आप पर थोप दें। आप अपनी वैचारिकता पर कितनी भी बल क्यों न दें, सांप्रदायिक दंगे में महज अपने नाम की वजह से मारे जा सकते हैं। स्वाधीन चेतना के मनुष्य की यह सार्वभौम त्रासदी है और तत्कालीन रामानंदी भी इसी के शिकार हुए। शैवों से त्रस्त सभी वैष्णवों का संगठित होना और अस्तित्व का प्रश्न बन चुका था। दीगर वैष्णवता आत्मरक्षा के लिए मुख्यतः रामानंदियों पर निर्भर होने के बावजूद वैश्य वर्णाश्रम तथा आचार विचार की उपेक्षा बर्दाश्त करने को तैयार न थे। रामानंदी वैरागियों को अपनी स्वाधीन चेतना, अपनी विलक्षणता इस मजबूरी पर कुर्बान करनी पड़ती। इसी मजबूरी के साथ ही रामानंदियों की अपनी जरूरत भी थी अन्य वैष्णवों के बीच समादर अर्जित करने की। रामानंद रामानुज की परंपरा में थे अवश्य, लेकिन वर्णाश्रम के प्रति उनका उपेक्षा भाव और संस्कृति के स्थान पर साधना और संप्रेषण दोनों के लिए लोक भाषा को प्राथमिकता देना उन्हें अद्वितीय बना देता है। अंतः साधना पर रामानंद के बल का संबंध योगियों के साथ उनके संभावित संपर्क से छोड़ा जाता है, लेकिन योगियों के विपरीत रामानंद की साधना में गहरी सामाजिक आलोचना भी प्रत्यक्ष रूप से मौजूद थी। स्वाभाविक ही था कि रामानुजी लोग अपनी परंपरा से रामानंद का संबंध नकारते तो नहीं थे, लेकिन उन्हें गुरु परंपरा के स्थान भी नहीं देते, बल्कि उन्हें भटके हुए शिष्य के रूप में ही देखते थे। रामानुजी संप्रदाय का सुप्रभाव मुख्य रूप से दक्षिण भारत में ही था। रामानुजी परंपरा से रामानंद के संबंध के कारण उत्तर भारत के रामानंदी माने तो श्री संप्रदाय के ही अंतर्गत जाते थे, लेकिन संकोच और विभ्रम के साथ, कारण वही श्री संप्रदाय के अंतर्गत हैं तो आचार विचार की परवाह किए बिना कैसे रह सकते हैं। श्री संप्रदाय के अंतर्गत हैं तो उनकी परंपरा में कबीर और जैसे अंत्यज पूजे क्यों जाते हैं, पीपा जैसे क्षत्रियत्व का त्याग कर देने वाला राजा, धन्ना जाट और सेन नाई जैसे शूद्र, पद्मावती और स्त्री की गणना रामानंद के पट्ट शिष्यों में क्यों की जाती है। 18वीं सदी के आरंभिक 4 दशकों में रामानंदियों को अवसर मिला कि वे स्वयं को श्री संप्रदाय का प्रामाणिक उत्तराधिकारी मनवा सके। रामानुजी श्री वैष्णव वैसे भी उत्तर भारत की राजनीतिक गतिविधियों और संप्रदायगत प्रतिस्पर्धाओं से ज्यादा वास्ता नहीं रखते। रामानंदी यदि वर्णाश्रम की उपेक्षा और आचार विचार की शिथिलता का दोष सुधार ने तो उन्हें क्या आपत्ति हो सकती थी। यह दो सुधार केवल भविष्य के लिए ही नहीं अतीत पर भी लागू किया गया। एक ही पांत में भोजन, अंत्यजों को दीक्षा और शूद्रों को जनेऊ देने पर प्रतिबंध तो भविष्य में लागू होने ही थे। अतीत में ही रामानंद के अब्राह्मण शिष्यों की हैसियत हटाने में रामानंदियों को मजबूर किया गया। व्यवस्था दी गई कि रामानंद के शिष्यों में से अब्राह्मणों और स्त्री को संप्रदाय के आचार्यों की हैसियत हासिल नहीं होगी। वैसे ही जैसे कि स्वयं रामानंद की श्री संप्रदाय में महत्वपूर्ण शिष्य की हैसियत तो हासिल थी, लेकिन मंत्र दीक्षा देने या गादी स्थापित करने के लिए अधिकृत आचार्य या गुरु की नहीं। अब स्वयं रामानंदी संप्रदाय में यही स्थिति कबीर, रैदास, पीपा, धन्ना, सेन और पद्मावती की होनी थी। रामानंदियों के दोयम दर्जे को रेखांकित करने के लिए रामानुजियों ने यहाँ तक की व्यवस्था कराई कि दीक्षा आदि के लिए अधिकृत रामानंदी महंत भी स्वयं को दासी कहेंगे, आचार्य नहीं। आचार्य तो केवल रामानुजी श्री वैष्णव ही कहलाएंगे। दोयम दर्जे के इसी रेखांकन को रद्द करने के लिए भगवद्दास स्वयं को भगवदाचार्य कहने लगे थे। रामानंदी संप्रदाय के सामूहिक चित्त में रामानंद की विलक्षण व्यक्तित्व की उपस्थिति और संप्रदाय के सामाजिक आधार का परिणाम यह हुआ कि रामानंदियों ने सवाई जयसिंह के अनुशासन पर्व को कभी भी पूरे तौर से नहीं अपनाया। अनुशासन तोड़ने में उन्हें 200 साल भी नहीं लगे। सिद्धांत में भी और व्यवहारिक धरातल पर रामानंदी ज्यादा ही कंजर्वेटिव कभी नहीं हुए। अनुशासन पर्व 18वीं सदी के पूर्वार्ध में लागू किया गया था। 19वीं सदी में के अंतिम में दशक में तो 1851 में मारवाड़ रियासत की जनगणना रिपोर्ट 1986 के बारे में आप दूसरे अध्याय में पढ़ चुके हैं। यह रिपोर्ट मारवाड़ के विभिन्न समुदायों के बारे में अनुभव और सर्वेक्षण आधारित जानकारी देती है। इसी समुदाय के रामानंदी साधु भी शामिल थे। इन साधुओं के स्थानों और महंतों के बारे में बताते हुए यह रिपोर्ट सूचना देती है कि ये महंत राज दरबार और विभिन्न सरदारों द्वारा काफी सम्मानित है। रिपोर्ट में रामानंदियों के झींतड़ा स्थित मठ के बारे में कहा गया है। झींतड़े के महंत भी अपने परगने सोचते हैं और खोड वाले के गुरुभाई हैं। यह चंपावत सरदारों के का गुरुद्वारा है और यहाँ जान राय जी की गद्दी कुम्हारों की गद्दी भी मशहूर है, लेकिन क्योंकि यहाँ के कुंभाजी जात के कुम्हार थे मगर बड़े भगत हुए और केवल कुंभा कहलाते हैं। 19वीं सदी के आरंभिक वर्षों में बिहार का सर्वे कर रहे फ्रांसिस बुकानन ने नोट किया कि उनके बंगाली वैष्णव सहायकों के मन में बिहार के रामानंदी वैष्णव के प्रति काफी तिरस्कार का भाव है। यह तिरस्कार कारण बूकानंद जानते थे। अपने सर्वे में वे अपनी रामानंद अनेक रामानंदी मठों में सूत्रों का महंत गादी पर विराजमान देख रहे थे। पटना जिले में तो उन्होंने पाया कि इक्का दुक्का रामानंदी महंत ही ब्राह्मण थे, अधिकांश संबंध शूद्र जातियों से ही है। बूकानंद के सर्वे से कुछ बरस बाद एच एच विल्सन ने भी नोट किया, गंगा जमुना के इलाके में बहुत से रामानंदी अधिकांशतः दरिद्र और निम्न वर्गों के, हालांकि इनमें कुछ क्षत्रिय और लड़ाकू किस्म के ब्राह्मण भी थे। मैक्स मुलर ने वेदाध्ययन और भारत विद्या में सारी दिलचस्पी के बावजूद भारत आने की जरूरत कभी नहीं समझी। उन्हें जरूरी नहीं लगा कि ऋग्वेद के टेक्स्ट के साथ साथ वेदाध्ययन की जीवंत परंपरा और उनके परिवेश का प्रत्यक्ष परिचय भी प्राप्त करें। मैक्स मुलर औपनिवेशिक ज्ञानकांड से संबद्ध थे। आजकल बहुत से भारतविद अमेरिका या यूरोप से भारत आते तो साल में 2 बार हैं, लेकिन वास्तविक दैनंदिन जीवन और देशभाषा स्रोतों पर वे बस कृपा दृष्टि ही करते हैं। उनके साथ सम्मानपूर्वक संवाद करना ऐसे ज्ञानियों को जरूरी नहीं लगता। वे इन चीजों के अध्ययन से निष्कर्ष पर पहुंचने के झंझट में नहीं पड़ते। निष्कर्ष तो वे साथ लाते हैं, खोज सिर्फ ऐसे पूर्व प्राप्त निष्कर्षों को सिद्ध करने वाले मटेरियल या नेटिव इन्फॉर्मेंट की होती है। ऐसे सिद्ध ज्ञानी उन रामानंदियों को ब्राह्मणवादी और कुछ ज्यादा ही कंजर्वेटिव बताएं जिन्होंने रामानुजियों और अन्य लोगों के दबाव का मुकाबला करते हुए भी शूद्रों को महंत बनाया, तो किम आश्चर्य। खैर, ब्राह्मणवाद के विरुद्ध रामानंदी संप्रदाय के संघर्ष और इतिहासकारों द्वारा उनकी उपेक्षा का यह किस्सा विस्तार से फिर कभी। अब हम भगवताचार्य का कुछ परिचय प्राप्त करें। भगवताचार्य की वीर गाथा, सफलता और विफलता। भगवताचार्य जबरदस्त संगठन क्षमता के धनी तथा अत्यंत मेधावी व्यक्ति थे। 15वीं सदी के हिंदी रामानंद के स्थान पर 14वीं सदी के संस्कृत रामानंद को पधरा देना कोई हंसी खेल न था। इस पराक्रम में उनके कई साथी बने, कई छूटे। आरंभिक दिनों के परम सहयोगी रघुबर दास आगे चलकर उतने ही परम विरोधी हो गए। हालांकि भगवताचार्य की देखा देखी स्वयं को रघुबराचार्य कहना उन्होंने भी शुरू कर दिया। हम कदम से दुश्मनी तक का यह सफरनामा खुद में निहायत दिलचस्प है, लेकिन इसके बयान की जगह यह नहीं। इतना ही जान लें कि भगवताचार्य संप्रदायगत गतिविधियों के साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन, हरिजनोद्धार और हिंदू मुस्लिम एकता को गांधीवादी प्रोजेक्ट की ओर गए, जबकि उन चीजों में रघुवर दास की कोई दिलचस्पी नहीं थी। स्वाभाविक ही था कि उन्हें राजाओं, जागीरदारों का खूब सहयोग मिला। भगवताचार्य के संपन्न समर्थकों में गुजराती व्यापारी और नौकरी पेशा लोग ही थे। खैर, वापस 20वीं सदी के तीसरे दशक की अयोध्या की ओर चले। अपने शिष्य की मेधा पर गर्व करने वाले गुरु महंत राम मनोहर प्रसाद ने शिष्य की विघटनकारी गतिविधियों पर चिढ़कर उसे बड़ा स्थान से निकाल दिया, लेकिन भगवताचार्य गुरु परंपरा बदल डालने का अपना संकल्प पूरा करके ही रहे। हमने देखा है कि इस संकल्प की सफलता का कारण यह था कि भगवताचार्य के अभियान को रामानुजियों के ब्राह्मणवादी रवैये से क्रुद्ध रामानंदियों का बल प्राप्त था। आत्मकथा में भगवताचार्य बताते हैं कि उनका जन्म उत्तर प्रदेश से पंजाब जा बसे ब्राह्मण परिवार में 1880 में हुआ था। उनका जन्म नाम सर्वजीत था। घर से संबंध टूटने पर उन्होंने अपना नाम भवदेव ब्रह्मचारी रख लिया, और वे यह भी बताते हैं कि चूंकि उन्हें युवावस्था में अपनी जाति छिपाकर बिहार में रहना पड़ा था, इसलिए उनके विरोधी उन्हें निम्न जाति में उत्पन्न बिहारी कहा करते हैं। विवाद के दिनों में उन्हें अपनी जाति को लेकर विरोधियों से व्यंग बाण लगातार झेलने पड़े, लेकिन विफलता प्राप्त होने के साथ साथ इस तरह की धीरे धीरे ठंडी पड़ती गईं सारी बातें। इन दिनों रामानंदी संप्रदाय में भगवताचार्य द्वारा अपनी आरंभिक जीवन के बारे में बताई गई बातों पर कोई संदेह नहीं करता। आत्मकथा के अनुसार भवदेव ब्रह्मचारी 40 साल के आयु में 1920 ईस्वी में अयोध्या पहुंचे। वे गांधी जी के प्रशंसक थे। कोचरब अहमदाबाद आश्रम में कुछ दिन भी रह आए। मुंगेर में रहते हुए राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भी थे। असल में सन्यासी बनने का ख्याल ही उनके मन में इसलिए आया था कि यदि सन्यासी बन जाऊं तो पुलिस के हाथ से छूट सकता हूं। रामानुजियों के प्रसिद्ध तोताद्री मठ के स्वामी जी उन दिनों उत्तर भारत में भ्रमण कर रहे थे। उन्हीं से दीक्षा लेने के इरादे से भवदेव अयोध्या आए। रघुवरदास रामानंदी श्री वैष्णव थे और अयोध्या के ही निवासी थे। अपना इरादा उन्हें बताने पर भवदेव को मालूम पड़ा कि रामानुजी आचार्य से दीक्षित होने पर रघुवरदास के साथ उनका संबंध टूट जाएगा। कारण कि यह कि यद्यपि संप्रदाय एक ही है परंतु भोजन व्यवहार नहीं। भवदेव के लिए यह चौंकाने वाली सूचना थी कि रामानंदियों को श्री वैष्णव मानने के बावजूद रामानुजी उनके साथ भोजन व्यवहार नहीं करते। वे अपने मित्र के साथ संबंध तोड़ने को तैयार नहीं थे। तय किया कि वे श्री रघुवर के ही तरह रामानंदी साधु हो जाएंगे। रघुवर दास का संबंध बड़ा स्थान से था। उन्होंने अपने महंत जी से बात की। भवदेव के संस्कृत ज्ञान और आगे पढ़ने की इच्छा से प्रभावित होकर महंत राम मनोहर प्रसाद ने उन्हें बड़ा स्थान में रख लिया। वे बकायदा शंख चक्रांकित रामानंदी वैष्णव बने। नाम रखा भगवत दास। इस समय तक रामानंदियों का असंतोष मुखर होने लगा था। रामानंदियों से संबंध विच्छेद को आतुर स्वतंत्रतावादी दल को भगवत दास और रघुवर दास में काफी संभावनाएं नजर आ रही थीं। लेकिन राम मनोहर प्रसाद स्वयं परंपरावादी थे। वे रामानुजियों से पवित्र आचार विचार और संस्कृत ज्ञान में प्रतिस्पर्धा करना चाहते थे, विच्छेद नहीं। इसलिए उन्होंने वेदांत पाठशाला की स्थापना की और दक्षिण से एक रामानुजी अध्यापक को आमंत्रित किया। हम देख चुके हैं कि इन महाशय का आगमन दुर्भाग्य से बड़े बुरे मुहूर्त में हुआ। जिन तोताद्री स्वामी के शिष्य बनने के इरादे से भवदेव मुंगेर से अयोध्या पहुंचे थे, स्वयं उनका व्यवहार रामानंदी के इरादे से भवदेव मुंगेर से अयोध्या पहुंचे थे स्वयं उनका व्यवहार रामानंदी असंतोष को ज्वालामुखी बनाने की दिशा में ले जा रहा था, यह भी हम देख चुके हैं। अपने गुरु की भावनाओं का ध्यान रखते हुए भगवत दास रामानंदियों के स्वतंत्रता आंदोलन से दूर रहने के लिए अयोध्या से प्रयाग चले गए। लेकिन थे वे स्वभाव से एक्टिविस्ट। प्रयाग पहुंचकर उन्होंने अपने स्वभाव को व्यक्त करने के लिए उन्होंने एक बार फिर से राष्ट्रीय आंदोलन का सहारा लिया। रघुवर दास को राष्ट्रीय आंदोलन से कोई वास्ता नहीं था। उनकी आंदोलन प्रतिभा और रुचि रामानंदी स्वतंत्रता आंदोलन तक सीमित थी। अपने मित्र के राजनीति में पड़ जाने से वे किंचित खिन्न ही थे। अन्य स्वतंत्रतावादी रामानंदियों की तरह वे भी यही चाहते थे कि भगवत दास देश के अंग्रेजों से आजाद कराने से ज्यादा ध्यान रामानंदियों के रामानुजियों से मुक्त कराने में दें। भगवताचार्य बताते हैं कि वैष्णव लोग मुझे खींचते थे परंतु मैं पीछे होता जा रहा था। उनमें दो कारण थे, एक तो ये कि मेरे श्री गुरुदेव यह नहीं चाहते थे कि मैं उस कलह में पढ़ूं, दूसरा यह कि मैं राष्ट्रीय सेवा को ही सदा से मुख्य कार्य मानता आया था। यह कलह सांप्रदायिक था। इससे राष्ट्र को कोई भी लाभ मिल नहीं सकता था। मैं इससे बचने के लिए ही थोड़े दिनों के लिए प्रयाग चला गया था। प्रयाग में रहते हुए भगवत दास राष्ट्रीय आंदोलन में काफी सक्रिय रहे। आजीवन खादी धारण करने का व्रत भी उन्होंने इन्हीं दिनों लिया। बड़ा स्थान के महतो जी ने रघुवर दास को भी मुजफ्फरपुर भेज दिया। वे अपने दोनों शिष्यों की प्रतिभा और क्षमताओं को बखूबी वाकिफ थे। इन दोनों के अयोध्या में हर जाने से स्वतंत्रतावादी रामानंदियों का दल कमजोर हुआ। यही महंत जी चाहते थे, लेकिन राष्ट्रीय सेवा बहुत दिनों तक भगवत दास को सांप्रदायिक कला से दूर नहीं रख सकी। वे संप्रदाय में नए थे। उनके श्री गुरुदेव स्वतंत्रतावादियों को उत्पाती ही समझते थे, लेकिन रामानुजियों के ब्राह्मणवाद के प्रति तीव्र असंतोष कहिए या स्वयं को अब्राह्मण कहे जाने पर तीक्ष्ण रोष श्री गुरुदेव की नाराजगी का जोखिम उठाकर भी श्री भगवत दास ने अयोध्या लौटकर रामानंदी स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करने का फैसला कर ही लिया। घटना चक्र बहुत तेजी से चला। संस्कृत विद्या और आचार विचार में प्रतिस्पर्धा के जरिए रामानुजियों की निगाह में ऊपर उठने की परंपरावादियों की बात अधिकांश रामानंदियों को अपील नहीं करती थी, लेकिन यह तो ऐतिहासिक सच्चाई थी। और स्वयं रामानंदियों की मान्यता भी कि रामानंद थे रामानुज के शिष्य परंपरा में ही। स्वतंत्रतावादियों ने इस मूल्य मान्यता पर ही मूलभूत चोट करने की ठानी और तय कर लिया कि गुरु पर और तय कर लिया कि गुरु परंपरा बदल डालनी थी। एक समिति की आवश्यकता थी, एक समिति की आवश्यकता थी कि जो गुरु परंपराओं की शोध करे और उन परंपराओं में से यह ढूंढ निकाले कि रामानुज रामानंद का कोई संबंध नहीं है। शोध और ढूंढ के इस काम में अग्रणी भूमिका भगवत दास और रघुवर दास इन दो गुरु भाइयों की ही होनी थी। समय बहुत भयंकर था। रामानंदी साधु दो दलों में बंट गए। पारंपरिक गुरु परंपरा को मानने वाले और गुरु परंपरा बदल डालने में वाले के लिए कटिबद्ध दोनों और पर्चों पैम्फलेटों आरोपी प्रत्यारोपों की झड़ी लग गई थी। दोनों ओर से एक दूसरे पर फर्जी पांडुलिपियां तैयार करने के आरोप लगाए जा रहे थे। बड़ा स्थान को महंत जी परंपरावादियों के साथ थे, लेकिन रामानंदियों के दूसरे महत्वपूर्ण स्थान मणिराम की छावनी के महंत राम शोभादास स्वतंत्रतावादी रामानंदियों के संरक्षक की भूमिका निभा रहे थे। संस्कृत रामानंद की शास्त्र से आचार्य की निर्मिति में महंत जी की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण थी, यह उनके निधन पर रामानंदियों के अखबार विरक्त में प्रकाशित श्रद्धांजलियों से स्पष्ट हो जाता है। भगवताचार्य से श्रद्धांजलियां यह बताने के लिए उद्धृत करते हैं कि मैं उनका कितना बड़ा कृपा पात्र हूँ। महंत भगवान दास का खाकी ने अपनी श्रद्धांजलि में भगवताचार्य के प्रति महंत जी के विश्वास को तो रेखांकित किया ही, साथ ही साथ स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि छावनी ही वह स्थान है जहाँ से रामानंदीयता का प्रचार और प्रसार हुआ है। रामानंद स्वामी जी का जो चित्रपट हम आज देख रहे हैं वह उन्हीं स्वामी जी की देन है। ध्यान दें, रामानंद की संस्कृत शास्त्र सिद्ध आचार्य की छवि इन्हीं स्वामी जी और इनके कृपा पात्रों भगवताचार्य और रघुवराचार्य की ही देन है। आरोपों प्रत्यारोपों से भयंकर हो चुके उस माहौल में रघुवर दास ने स्वतंत्रतावादियों द्वारा वांछित रामानंद के शिष्य अग्रदास रचित रामानुज विहीन गुरु परंपरा संयोगवश खोज डाली। इसी परंपरा के बारे में पूरा तत्वानुसंधायिनी समिति की ओर से कहा गया, इस परंपरा से यह बात मालूम होती है कि श्री रामानंद स्वामी जी महाराज श्री रामानुज स्वामी के परिवार में से नहीं थे। यद्यपि यह बात बहुत कोलाहल पैदा करने वाली है, तथापि गंभीरता के साथ इस पर विचार होना चाहिए। गंभीरता के साथ विचार करने के लिए हनुमान गढ़ी में शास्त्रार्थ का आयोजन किया गया। गंभीरता के साथ विचार तो इतने गर्म माहौल में क्या होता। स्वतंत्रतावादी अपने निष्कर्ष पर पहले से पहुंचे थे। बाकी रामानंदियों को रामानुजियों की ब्राह्मणवादी दंभ से पिंड छुड़ाने का कोई आधार चाहिए था। श्री अग्रदास महाराज विरचित प्राचीन परंपरा खोज निकालकर दोनों गुरु भाइयों ने वह उपलब्ध करा दिया। इस शास्त्रार्थ में भगवताचार्य ही रामान स्वतंत्रतावादियों के प्रमुख प्रवक्ता थे। उन्होंने नवपात्र गुरु परंपरा की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए अपने गुरु से बहस की और रामानुजी परंपरा से अलग होने को बेचैन रामानंदियों द्वारा विजयी घोषित कर दिए गए। इस विजय से उत्पन्न तनाव के फलस्वरूप भगवताचार्य को बड़ा स्थान छोड़ना पड़ा। मणिराम की छावनी में उनका बड़े उत्साह से स्वागत हुआ। हनुमानगढ़ी शास्त्रार्थ में प्राप्त विजय के बावजूद परंपरा युद्ध अनिर्णित ही था। बहुत से रामानंदी महंत अभी तक इस विषय में स्पष्ट नहीं थे। स्वतंत्रतावादियों द्वारा रामानुजी द्वारा लगाए जाने वाले इस आरोप में भी लोग पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थे कि रामानुजी ग्रंथों और रामानंदियों के श्री राम मंत्र पूज्य देवताओं और आचार्यों की निंदा की गई। उज्जैन में कुंभ होने वाला था। छावनी के महंत राम शोभादास ने भगवताचार्य को वहां रामानुजियों की को चुनौती देने का सुझाव दिया। यह चुनौती दी गई और जाहिर है कि रामानुजी आचार्य लोग रामानंदियों की दृष्टि में एक बार फिर परास्त हुए। यह सवाल महत्वपूर्ण था ही नहीं कि रामानुजी ग्रंथों में पूज्य आचार्यों की निंदा वास्तव में है या नहीं। ऐसी निंदा हो या न हो, रामानुजियों का अपमानजनक व्यवहार रामानंदियों के दैनंदिन जीवन का वास्तविक अनुभव था। रामानुजी आचार्य अपने ब्राह्मण रामानंदी शिष्यों तक को धातु के बर्तन नहीं छूने देते थे। अब ब्राह्मणों की बात ही क्या। रामानुजियों के हिसाब से शूद्रों को दीक्षा देने वाले, उन्हें महंत मान लेने वाले रामानंदी पर्याप्त रूप से शूद्र हो ही नहीं सकते थे। आखिर इसी तर्क से तो उन्होंने जात पात पूछे नहीं कोई कहने वाले रामानंद को श्री संप्रदाय की ऐतिहासिक स्मृति से बहिष्कृत किया था।
उज्जैन शास्त्रार्थ 9 मई 1921 को हुआ। रामानंदियों का कहना था कि श्री राम मंत्र की स्वतंत्र गुरु परंपरा है और रामानुजी ग्रंथों में श्री राम मंत्र का निंदा किया गया है। रामानुजी इन दोनों ही बातों से इनकार करते श्री राम मंत्र को स्वतंत्र गुरु परंपरा के प्रमाण स्वरूप भगवताचार्य इस समय तक भगवतदास ही ने वाल्मीकि संहिता के इन 3 श्लोक प्रस्तुत किए। इस संहिता को रामानुजी प्रामाणिक नहीं कल्पित मानते थे। इसकी अप्रामाणिकता सिद्ध करने और श्री राम मंत्र की निंदा संबंधी आरोप का उत्तर देने के लिए शास्त्रार्थ के पंजों ने रामानुजियों को 2 दिन का समय दिया। वे उत्तर नहीं दे सके या उन्होंने विच्छेद की अपरिहार्यता स्वीकार कर ली और उत्तर देने की जरूरत नहीं समझी। कारण जो भी हो, 1958 में आत्मकथा लिख रहे भगवताचार्य के शब्दों में उनका उत्तर तो आज तक नहीं आया। श्री रामानंद संप्रदाय स्वतंत्र से संप्रदाय बना। आफत टलने का नतीजा तुरंत देखने को मिला। स्वाभाविक गर्व के साथ भगवताचार्य ने याद किया। उसी समय थोड़े ही दिनों में अंतिम स्नान था। अब तक की श्री रामानुजी लोग आगे आगे स्नान के लिए चलते थे, उनकी मसाल होती थी। पीछे पालकी में कोई रामानुजी महापुरुष होता था। रामानंदीय संत ही इसी पालकी को उठाते थे। पीछे पीछे रामानंदी वैष्णव रहा करते थे। श्री निम्बार्क संप्रदाय, श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय और श्री मध्य संप्रदाय भी श्री रामानंदीय वैष्णवों के साथ ही चल सकते थे। इस अंतिम स्नान में रामानुजियों को छोड़ दिया गया। अब वह किसी भी कुंभ में किसी भी स्नान में रामानंदीय संप्रदाय के साथ नहीं चल सकते थे। रामानंदियों के प्रमाणों का खंडन करने और उनके आरोपों का उत्तर देने के लिए रामानुजियों के पास 11 मई शाम तक का समय था। भगवताचार्य के शब्दों में उत्तर तो आज तक भी नहीं आया। अतः तारीख की 11/5/21 ईस्वी के सायंकाल को संप्रदायोद्धार का दिन मानना चाहिए। संप्रदायोद्धार के इस दिन के बाद भी संघर्ष कई वर्षों तक जारी रहा। विजय प्राप्ति के तरीकों और उनकी वास्तविकता को लेकर तनाव बने हुए थे। अयोध्या लौटना भगवत दास के अनुकूल नहीं था। वे उज्जैन से गुजरात चले गए। कुछ दिन बाद अवश्य अयोध्या लौटे, लेकिन आगे चलकर गुजरात ही उनकी गतिविधियों का मुख्य क्षेत्र बन गया। भगवताचार्य को लगभग 1 सदी का जीवन मिला। वे व्यापक सामाजिक राजनीतिक प्रश्नों में सक्रिय रहे। खादी व्रत तो उन्होंने जीवन भर निभाया। गांधी जी की हरिजनोद्धार और मंदिर प्रवेश आंदोलन से भी जुड़े रहे। अपनी आत्मकथा के आरंभ में भगवताचार्य ने गांधी जी द्वारा 24 सितंबर 1934 को लिखे गए एक पोस्टकार्ड का चित्र प्रकाशित किया है। यह पोस्टकार्ड गांधी जी ने भगवताचार्य के एक पत्र के जवाब में लिखा। भगवताचार्य अब तक जन्माधारित ऊंच नीच के विरोधी हो चुके थे। गांधी जी के हरिजनोद्धार कार्यक्रम में सक्रिय थे। पुराने साथी रघुवराचार्य से मनमुटाव का एक कारण भगवताचार्य का कांग्रेसीपन भी था। बलभद्र दास द्वारा जैसे परंपरावादी भगवताचार्य को आर्य समाजी विष बीज कहते ही थे, इसी विष बीजपन में कांग्रेसीपन का संयोग भी हो गया। भगवताचार्य के मन में कुछ बिगूचन अर्थात कन्फ्यूजन आने लगा था। रामानंदी संप्रदाय के सुधार और तत्संबंधी विवादों तक ही स्वयं को सीमित रखें या राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रियता बनाए रखें, यही प्रश्न उन्होंने गांधी जी को लिख भेजा था कि रामानंदी साधु होते हुए भी मंदिर प्रवेश आंदोलन में भाग लूं या नहीं। गांधी जी ने अपने स्वभाव के अनुकूल सलाह दी, भगवताचार्य अपनी आत्मा की आवाज पर अमल करें आप। भगवताचार्य की आत्मा की आवाज कितनी जोरदार थी यह तो अब आप जान ही गए हैं। इस मामले में भी उन्होंने वैसा ही जोर दिया। मंदिर प्रवेश आंदोलन में ही नहीं, हिंदू मुस्लिम एकता में भी गांधीवाद कार्यक्रमों में अधिक सक्रिय हो गए। अहमदाबाद ने उनके नाम पर भगवताचार्य आश्रम संस्थापित करने वाले वयोवृद्ध खाकी बापू ने मुझे 3 सितंबर 2006 को बताया कि भगवताचार्य की प्रेरणा से अनेक रामानंदी साधु और महंत राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े थे। स्वयं खाकी बापू ने इस सिलसिले में जेल यात्रा की थी। उसी दिन मेरी भेंट हुई रामानुजी आचार्य रामेश्वरानंद से। वयोवृद्ध रामेश्वरानंद जी ने रामानुजियों के विरुद्ध भगवताचार्य के संघर्ष को एक रामानुजी लड़के के रूप में देखा था। आचार्य जी की मेधा और दृढ़ता से वे उन दिनों भी बहुत प्रभावित थे और आज तो स्पष्ट रूप से मानते हैं कि रामानुजियों के विरुद्ध रामानंदियों का असंतोष बिल्कुल जायज था। वे भगवताचार्य की राजनीतिक गतिविधियों को भी सराहते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि गांधी जी की हिंदू द्रोही गौ घातक मानने वाले कुछ लोगों ने गांधी जी के साथ देने के अपराध के कारण 1954 में भगवताचार्य के प्राण लेने की कोशिश भी की थी। सबसे रोचक और संकेतपूर्ण बात यह है कि मुझे यह सब लगभग भक्ति भाव से बताने वाले रामेश्वरानंद ने आज तक किसी रामानंदी के हाथ से अन्न जल ग्रहण नहीं किया, भगवताचार्य तक के हाथ से भी नहीं। हालांकि अपने शिष्यों को वे रामानंदी हाथों से अन्न जल ग्रहण करने की छूट देते हैं। भगवताचार्य ने गांधी जी के जीवन पर संस्कृत महाकाव्य भारत परिजातम की रचना भी की। आजादी के बाद वे कांग्रेस समर्थन साधुओं के संगठन भारत साधु समाज के कर्ता धर्ताओं में रहे। ब्राह्मणों की सर्वोच्चता और उससे जुड़ी छुआछूत की बीमारी से वे संप्रदाय के भीतर तो लड़ते ही रहे, बाहर भी संघर्ष करने से चूके नहीं। भगवदाचार्य की ऐसी गतिविधियों का स्वाभाविक परिणाम था कि कंजर्वेटिव सन्यासी स्वामी करपात्री ने उन्हें वेद विरोधी नास्तिक घोषित कर दिया। ब्राह्मण सर्वोच्चता छुआछूत और जातिवाद का विरोध करने के लिए भगवदाचार्य वेद वाक्यों की आलोचना करने से भी नहीं हिचकिचाते। आत्मकथा में उन्होंने मुंबई में 3 दिसंबर 1957 को हुए संस्कृत सम्मेलन में दिए अपने भाषण को याद किया। वहां लगभग सभी कह रहे थे कि संस्कृत देवभाषा है और इसके पढ़ने से स्वर्ग मिलता। भगवताचार्य ने अपने भाषण में कहा कि संस्कृत एक भाषा है और किसी भाषा के पढ़ने से स्वर्ग नहीं मिला करता। अधिक महत्वपूर्ण और विवादास्पद था उनका दूसरा भाषण, जिसमें भक्ति का इतिहास बताते हुए भगवताचार्य ने वेद के पुरुष सूक्त की आलोचना की। कहा कि इस सूक्त में पूछा कुछ और उत्तर कुछ दिया गया। पूछा था कि पैर क्या थे, उत्तर दिया गया है कि पैर से शूद्र हुआ। शूद्र कहाँ से पैदा हुआ यह तो पूछा नहीं गया, तब पैर से पैदा हुआ वेद का उत्तर हास्यास्पद है। आगे उन्होंने कहा कि मान ले कि उस पुरुष के उस परमात्मा के पैर से पैदा शूद्र हुए, वह नीच क्यों माना गया? भगवान के या किसी भी देवता के पैर ही तो पूजे जाते हैं, मुख्य पूजा तो कोई भी नहीं करता। तब उन पवित्र पैरों से पैदा हुए शूद्र को इतना बड़ा नीच क्यों माना गया? ऐसे विचार व्यक्त करने वाले व्यक्ति को करपात्री जी ने नास्तिक कहा। इसमें आचार्य की कोई भी बात नहीं, न कहते तो जरूर आश्चर्य होता। भगवताचार्य धुन के पक्के इंसान थे। 20वीं सदी के तीसरे चौथे दशक में वे आनंद भाषी की प्रामाणिकता में कसम खा रहे थे। इसे रघुवर दास द्वारा तैयार किया हुआ बताने वाले का बदमाश कह रहे थे। आगे चलकर रघुवर दास उर्फ रघुवराचार्य से उनकी खटक गई तो उन्होंने आनंद भाषी की प्रामाणिकता नकार दी। लेकिन संप्रदाय के स्वायत्त अस्तित्व की तो पहली ही शर्त थी कि वेदांत सूत्रों पर संप्रदाय का अपना भाष्य उपलब्ध है। 1963 में भगवताचार्य ने रामानंद भाष्य प्रस्तुत किया। इसके मुख्य पृष्ठ पर पिछले 25 सालों से की जा रही घोषणा फिर से दोहराई कि आनंद भाष्य जाली है। ध्यान देने की बात यह है कि भगवताचार्य ने रामानंद भाष्य को रामानंद द्वारा रचित बताने की बजाय दावा किया कि इसमें वेदांत सूत्रों के संगति श्री रामानंदीय वैष्णव संप्रदायों के सिद्धांतानुसार लगाई गई है। यह बात किसी संप्रदाय द्वारा मान्यता प्राप्त करने की पारंपरिक विधि अनुकूल थी, लेकिन आनंद भाष्य को स्वतंत्र जीवन प्राप्त हो चुका था। भगवताचार्य को भले ही यह जीवन शून्य लगता रहे, वह संप्रदाय के स्वायत्त अस्तित्व का आधार बन चुका था। रघुवराचार्य के सहयोग से 15वीं सदी के हिंदी रामानंद का स्थान पर 14वीं सदी के संस्कृत रामानंद को सफलतापूर्वक स्थापित करने और भगवताचार्य के रामानंदियों के चित्त में आनंद भाष्य को स्थापित करने में विफल रहे। उनकी सफलता ऐतिहासिक थी और विफलता मार्मिक। कृतज्ञ संप्रदाय ने उन्हें अपर रामानंद कहा। 1970 में जब वे 90 वर्ष के हो चुके थे, उनके प्रशंसकों ने उन्हें औपचारिक रूप से जगत गुरु रामानंद घोषित किया। अब तक ऐसे प्रयत्नों का विरोध स्वयं भगवताचार्य करते थे। वे आचार्य गादी से अधिक मूल्यवान बतौर विद्वान के अपनी स्वतंत्रता को मानते थे। रामेश्वरानंद बताते हैं कि आचार्य गादी पर बैठते हुए भगवताचार्य ग्लानि से रो दिए। रो दिए थे, मैंने इस गादी के लिए अपनी कलम की स्वाधीनता का बलिदान कर दिया। अब भगवताचार्य पिछले कई वर्षों से चली आ रही घोषणा आनंद भाव से जाली है उतने जोर शोर से नहीं दोहरा सकते थे। वे संप्रदाय का रवैया यह था और कि रामानंद के नाम के साथ आनंद भाष्य का विरद ही ठीक है। संप्रदाय को भगवताचार्य विरचित रामानंद भाष्य की कोई जरूरत नहीं, भले ही आचार्य गादी पर स्वयं भगवताचार्य जगत गुरु रामानंदाचार्य की उपाधि के साथ विराजे। जगत गुरु रामानंदाचार्य की उपाधि स्वीकार करते समय भगवदाचार्य के आंसू स्वाभाविक ही थे। हिंदी संप्रदाय के संस्कृत रूपांतर का आख्यान भगवदाचार्य की वीर गाथा दोनों शिक्षाप्रद हैं। इनसे सीखा जा सकता है कि इतिहास लेखन का अर्थ अतीत का वर्तमान की चाकरी में लगा देना नहीं होता। रामानुजियों के दुर्व्यवहार का विरोध करना यह निस्संदेह अच्छा और रामानुजी काम था, लेकिन यह काम करने के लिए ऐतिहासिक साक्ष्य के साथ साथ सुलक भी किया गया अच्छा कहना असंभव है। भगवदाचार्य गांधी जी के प्रति सम्मान और अनुराग के बावजूद सांप्रदायिक कला के प्रसंग में यह याद नहीं रख पाए कि साधी के श्रेष्ठता के साथ साथ साधन की शुद्धता भी आवश्यक है। भगवदाचार्य की वीरगाथा परिणति को प्राप्त हुए न केवल संप्रदाय ने बल्कि साहित्य के इतिहास ने भी 15वीं सदी के हिंदी रामानंद के स्थान पर 14वीं सदी के संस्कृत रामानंद को स्वीकार कर लिया। संप्रदाय ने संस्कृत रामानंद को प्राथमिकता अवश्य दी, लेकिन हिंदी रामानंद को पूरी तरह खारिज कभी नहीं किया, इसलिए उसे दो रामानंदों की बात करने की जरूरत भी कभी नहीं पड़ी। दो कबीरों की बात पर भी संप्रदाय ने कभी बल नहीं दिया, स्वयं भगवदाचार्य ने भी इसे नहीं दोहराया। काशी के पंचगंगा घाट पर स्थित मूल रामानंदी स्थान में कबीर ही नहीं रैदास की प्रतिमा में भी पूजा भाव से स्थापित है। स्वतंत्रतावादी रामानंदी रामानुजियों के ब्राह्मण अभिमान से मुक्ति चाहते थे, मुक्ति तो मिली लेकिन स्वयं ब्राह्मणवादी पैमाने को आत्मसात करके। रामानंद की विलक्षणता ऐसे पैमानों की परवाह न करने में थी। उन्होंने लोगों के साथ नहीं अपनी आराध्य के साथ संवाद करने के लिए देशभाषा को ही अपनाया, न केवल भक्ति बल्कि सामाजिक व्यवहार के धरातल पर भी। जात पात पूछे नहीं कोई की तेजस्वी घोषणा की। रामानंद के समकालीन आरंभिक आधुनिक काल के उत्तर भारतीय समाज ने इस घोषणा को रामानंद की ऐसी अनिवार्य पहचान बना दिया कि यह वैष्णव मताज व भास्कर की प्रामाणिकता का प्रतिमान बन गई। अपेक्षति तत्र कुलम बलम चनो। ब्राह्मणवादी पैमानों पर स्वयं को सिद्ध करने के दबाव में रामानंदी पिछली कई सदियों से जूझ रहे थे। संप्रदाय के आचार्यों की मान्यता रामानंद के द्विज शिष्यों को ही देंगे, उन्हें 18वीं सदी में ही मानना पड़ा। भगवताचार्य के अभियान के फलस्वरूप कबीर रैदास पीपा और धन्ना के साथ रामानंद का संबंध ऐतिहासिक और वैचारिक रूप से असंभाव्य प्रतीत होने लगा। क्षत्रिय राजा के सहयोग से आरंभ हुआ ब्राह्मणवादी अभियान औपनिवेशिक आधुनिकता की कृपा से अंततः सफल हुआ। रामानंद का रूपांतरण कर देने वाले भगवताचार्य की ऐतिहासिक सफलता में भी उनकी मार्मिक और विडंबनापूर्ण विफलता भी छुपी हुई थी। विफलता के इस विडंबना से औपनिवेशिक आधुनिकता कितनी बड़ी भूमिका निभा रही थी यह इस पूरे आख्यान से आपने देखा। सांस्कृतिक संवेदना विच्छेद से ग्रस्त यह आधुनिकता कल्पना ही नहीं कर सकती थी कि संस्कृत परंपरा के शास्त्र सिद्ध आचार्य हुए बिना तथाकथित मध्यकालीन पिछड़े हुए समाज में रामानंद इतने लोकप्रिय हो सकते थे। यह सफलता और विफलता हमें एक बार फिर याद दिलाती है कि अपना मनचाहा इतिहास गढ़ने का प्रलोभन मोहक और मादक हो सकता है, लेकिन इतिहास के साथ साथ स्वयं ऐसे मादक मोह से ग्रस्त लोगों को के लिए घातक भी होता है। ऐतिहासिक सच्चाइयों को सम्मान और सम्मान सामना करने की बजाय वक्त जरूरत के मुताबिक इतिहास गढ़ने का नशा जब चढ़ता है तब मजा तो सचमुच बहुत देता है, लेकिन विमर्श और समाज के स्वास्थ्य के लिए घातक भी बहुत होता है। जोश में निकलकर होश में आने तक की कई बार बहुत देर हो चुकी होती है। कबीर और रामानंद एक देर हो चुकी होती है कबीर और रामानंद एक बार फिर। रामानंदियों की तो अपनी ऐतिहासिक जरूरतें थी रामानंद की संस्कृत निर्मिति तैयार करें, लेकिन साहित्य और संस्कृति के इतिहासों की ऐसी क्या मजबूरी थी कि इस निर्मिति को बिना परीक्षण कर स्वीकार कर लें। परंपरा की आम राय को सिर्फ एक स्रोत अगस्त संहिता के तथा कथित 5 अध्यायों के स्थान पर आधार पर रद्द कर दें। रामानंद का यह आख्यान इसी प्रश्न का उत्तर खोजने के क्रम से संभव हुआ। आशा है कि अब उत्तर आपने सामने स्पष्ट है। हिंदी साहित्य का ही नहीं, कोई भी इतिहास लिखते पढ़ते समय यह याद रखना जरूरी है कि परंपरा साजिशों की संदूकची नहीं होती और देशभाषा के स्रोत बुद्धूपन के पिटारे नहीं होते। भक्ति संवेदना और आंदोलन की इतिहास लिखने के बाद भी यह भुलाकर नहीं सोचा जा सकता कि इतिहास लेखन के अनेक स्रोतों और प्रमाणों का गहरा संबंध विभिन्न संप्रदायों भक्ति संप्रदाय के ऐतिहासिक विकास और संघर्षों से है। अगस्त संहिता के 5 अध्यायों सरीखे काठ प्रमाण और भी हैं जिनका जन्म ही ऐसे संघर्षों का परिणाम है। इतिहास लेखन में अकाट्य प्रमाण की तरह बरतने की पहले स्वयं इन स्रोतों का इतिहास पर ध्यान देना जरूरी है। परंपरा सामान्य रामानंद कबीर संबंध को नकारने वाले एक प्रश्न यह भी उठाते हैं कि कबीर की रचना में उनके गुरु के तौर पर रामानंद या अन्य व्यक्ति का नाम सीधे सीधे क्यों नहीं मिलता। मेरा प्रति प्रश्न यह है कि सरहपा से लेकर तुलसीदास तक किस संत भक्ति या साधक की रचना से मिलता है, फिर यह मानने में ही क्या दिक्कत है कि इनमें से किसी का कोई गुरु नहीं। जाहिर है कि दिक्कत है, साधना की उस परंपरा में गुरु विहीन रहना अकल्पनीय था। जो यह जानते हैं उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि अपने गुरु का नामोल्लेख ना करना ही उस परंपरा की मान्य विधि थी। कबीर की रचना में रामानंद का नाम नहीं है तो नीरू नीमा का नाम ही कहाँ है। जिन स्रोतों के आधार पर नीरू और नीमा को कबीर का जनक या पालक या माता पिता माना जाता है, वे ही स्रोत रामानंद को कबीर का गुरु भी बताते हैं। रामानंद कबीर के गुरु नहीं थे, ऐसा कहने वालों को यह भी कहना चाहिए कि नीरू नीमा कबीर के न तो जनक जननी थे न कबीर की पाला। सदियों से चली आ रही पारंपरिक सर्वसम्मति को नकारने का कोई तो तार्किक आधार होना चाहिए। रामानंद को कबीर का गुरु मानने में अगस्त्य संहिता के कारण ऐतिहासिक असंभाव्यता और रामानंद की सांस्कृतिक निर्मित के कारण वैचारिक असंभाव्यता की जो बातें की जाती हैं वे कितनी निराधार हैं यह आप देख सकते हैं। संवेदना की समान धर्मिता कबीर रामानंद की ऐतिहासिक समकालीनता और रामानंद कबीर के गुरु शिष्य संबंध के बारे में पारंपरिक सर्वसम्मति के बावजूद रामानंद कबीर संबंध पर जो संदेह आधुनिक विद्वानों और अविद्वानों के चित्त का संस्कार बनकर जम गया है, ब्राह्मणवाद की सफलता का प्रमाण वह है। देशभाषा स्रोतों में सर्वमान्य रामानंद कबीर संबंध नहीं।